તારીખ 30/4/1988 ના દિવસે પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા આગ્રામાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 2.
विशेष अपेक्षा से मैंने ये एक सामूहिक रूप से जटिल बात क्या किसी भी मनुष्य को ऐसा ही होना चाहिए सामान्य सभा। अब विशेष में विशेष व्यक्ति रूप से यह बात है, अपनी परिणति जिससे टिकती हो और अपने को जिससे विशेष लाभ होता दिखाई दे वह करना चाहिए। क्या कहा कि अपनी परिणति टिकती हो, कैसे टिके, कैसे परिणति टिके, रस आवे तो परिणाम कहां टिकता है, ध्यान रसा में वहां परिणाम टिकेगा, ध्यान रस नहीं आएगा परिणाम नहीं टिकेगा। तो ये विशेष अपेक्षा मैंने व्यक्तिगत रूप से जिस मनुष्यों को अपना विचार करना हो, अपने लक्ष्य इस बात को समझना हो तो मुझे क्या करना चाहिए। यह कहते हैं कितने रस किसमें आता है, शास्त्र पढ़ने में रस आता है या चिंतन में रस आता है, दो में से किसमें रस आता है, जिसमें तुझे रस आता हो वहां तेरा परिणाम टिकेगा, लंबे काल तक ये बात चलेगी। और साथ ही साथ ये देखना कि अपने को जिससे विशेष लाभ, दो में से जिसमें विशेष लाभ ज्यादा लाभ होता हो दिखाई दे वह करना चाहिए। इसमें भी थोड़ी गहराई है कि किसी को वांछन का राग हो जाए, शास्त्र वांछन का राग हो जाए और इस राग को वृद्धिगत करता जाए, करते जाए और भीतर में नहीं देखे कि हमें कुछ लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है, दोनों बात में श्रेय लक्ष्य का ध्यान दिया है। सारांश यह है इस बात का कि शास्त्र अध्ययन, शास्त्र का अभ्यास आत्मलक्षी होना चाहिए। जो शास्त्र अभ्यास आत्मलक्षी होगा तभी ये दोनों बात बनेगी कि उसको पता चलेगा कि मेरा रस कहाँ है, मुझे रस आता है या नहीं आता है, ये बात को आत्मलक्ष्य वाले को ही समझ में आएगी। दूसरी तो वो अपने लाभ को देखेगा कि मेरा उपयोग का व्यापार तो चलता है लेकिन ये व्यापार में मुनाफा होता है कि सिर्फ परिश्रम ही परिश्रम होता है, ये बात स्वलक्ष्य ज्ञान में आ सकती है। अगर ज्ञान स्वलक्ष्य नहीं होता तो देखता ही नहीं कि लाभ होता है कि नहीं होता है, बस करते ही जाता है करते ही जाता है, ये परोक्ष परिणाम में ऐसा ही होता है। परोक्ष ज्ञान ये भी ऐसा ही है कि शास्त्र अभ्यास का लाभ हो जाए और शास्त्र अभ्यास करते रहे। जीव का स्वभाव सर्वज्ञ स्वभाव है, ज्ञान अपेक्षा से देखें तो जीव का सर्वज्ञ स्वभाव है, इसलिए वो तो अधूरा जानता है उसमें उसको संतोष नहीं है। सारी दुनिया को और शास्त्र पढ़े तो जितना भी ज्यादा जानकारी में आवे उतना ज्यादा जानकारी का उसको भाव, उसका अभिप्राय रहा करता है, लेकिन ऐसे पूर्ण जानकारी किसी की कभी होती ही नहीं। कितने भी शास्त्र पढ़े और सभी जानकारी के लिए सारी दुनिया का भ्रमण करे, घूमे, पूरी जानकारी होने वाली नहीं है। पराश्रित ज्ञान ज्ञानावरणी के बंध का कारण है, न पराश्रित ज्ञान ज्ञान के विकास का कारण है। पराश्रित ज्ञान ज्ञान के विकास का कारण है, ज्ञानावरण के बंध का ये कारण है, क्योंकि खुद तो ज्ञान है और ज्ञान स्वरूप का तो अपने स्वरूप का तो आश्रय लेता नहीं, पर परतत्व का परद्रव्य का आश्रय लेगा, विरुद्ध दिशा में जाएगा, प्रतिबंध युक्त होगा, भाव प्रतिबंध होगा तो द्रव्य प्रतिबंध इसके निमित्त से होगा होगा और ही इसको रोक नहीं सकते। ये ज्ञानावरणी है, निमित्त से कर्मबंध होने वाला प्रकृति। तो ये परलक्षी ज्ञान में कितना भी जानने का लोग हो, ये पद्धति उचित नहीं है। ज्ञान का विकास करने की ये पद्धति सही नहीं है। कौन कहता है? ये सत्शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्र की ये आज्ञा है, भगवान की ये आज्ञा है कि अगर तुझे तेरे ज्ञान का विकास करना हो तो अंतर्मुख जो सर्वज्ञ स्वभाव है, अंतर तत्व स्वरूप अंतर्मुख होकर के इसी के आश्रय में जा, इसी के अवलंबन में जा, सर्वज्ञ स्वभाव पैदा हो जाए। और बाहर निकला, उपयोग बाहर निकला कि जम का दूध समझो, कहते कि नहीं कहते, कहीं भी बाहर जाए, देवादी के प्रति कहीं भी बार है, उपयोग बार गया जम का दूध समझो। मैंने इसमें आत्मा के प्राण का नाश होता है, इसलिए जम का दूध तो मृत्यु के वक्त आता है, तो उसमें कौन सी मृत्यु होती है कि आत्मा के ज्ञान प्राण आनंद प्राण ऐसे जो स्वभावभूत प्राण है इसका घात होता है, इसका नाश होता है। इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया है कि जम का दूध समझो। ये सुगानी जी ने दृढ़ दृष्टि प्रकाश में इस बात को लिखा है। यहां कहते हैं कि अपने को जिससे विशेष लाभ होता दिखाई दे वह करना चाहिए। यदि शास्त्राभ्यास करने से अपने को निर्णय दृढ़ होता हो, विशेष लाभ होता हो, तो ऐसा प्रयोजनभूत शास्त्राभ्यास विशेष करना चाहिए। ये जो 421 नंबर का बोल है उसमें जो मुख्य बात है वो यहाँ पर है। ये मुमुक्षुओं को मार्गदर्शन में बहुत महत्वपूर्ण विषय दिया है कि शास्त्राभ्यास करने से आत्मस्वरूप का निर्णय होता हो या निर्णय हुआ है ये दृढ़ होता हो या विशेष मति या निर्मल होता हो, तो ऐसा प्रयोजनभूत, ये शब्द लिया है क्या, प्रयोजनभूत शास्त्राभ्यास विशेष करना चाहिए। इसमें क्या कहते हैं कि बिना प्रयोजन की कहीं बातें भी हैं शास्त्र में, ये तो 12 अंग है, सारी दुनिया की कोई बात ही बाकी नहीं रही भगवान की वाणी में। तो अब ऐसा है कि अपने प्रयोजन की बात कौन सी है, ये दृष्टिकोण सभी मुमुक्षुओं को होना चाहिए। सब बात सबके प्रयोजन की कभी नहीं होती, सब बात एक के प्रयोजन की भी नहीं होती और सब बात सबके प्रयोजन की भी नहीं होती। कोई बात किसके प्रयोजन की होती है, कोई बात किसके प्रयोजन की होती है, कोई बात किसके प्रयोजन की, क्यों कि मुमुक्षों में भी एक ही क्लास के मुमुक्षु सब नहीं होते, एक वर्ग के सब नहीं होते, अलग अलग स्तर के होते हैं, तो सब बात सबको नहीं लागू होती है। जैसे दृढ़ दृष्टि प्रकाश वाला परमात्मा बिल्कुल जैन दर्शन का टॉप सीक्रेट पूरे ऊंचे दर्जे के रहस्य की बातें हैं। अब कोई प्रारंभिक भूमिका वाला पढ़ने को जाएगा तो मंदिर दर्शन करने को बंद हो जाएगा, जो सुबह आता है बात जोड़ने को वो भी बंद कर देगा, ये हालत हो जाएगी। कोई इस बात को ठीक नहीं समझने वाला हो प्रारंभ की भूमिका में स्वच्छंद में भी चल जाए। सब बात सबके लायक नहीं होती है, सत शास्त्रों में भी सब बात सबके लायक होती नहीं और एक को भी सब बात लायक नहीं होती। इस परिस्थिति में सभी मुमुक्षुओं को अपने अपने ये विशेष बात है, व्यक्तिगत रूप से मेरे काम की बात कौन सी है, मुझे किस किस प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं और इसको मिटाने के लिए कहां कैसी कैसी बात आती है, ऐसा प्रयोजन बुद्ध विषय पर इसकी बहुत तीक्ष्ण नजर होनी चाहिए। इसी को यथार्थ मुमुक्षुता कहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा कि एक तो बहुत जानने की रुचि तो पड़ी ही है, सब जान लू बहुत जान लू, प्रयोजन बुद्ध भी जानने में समय गवाएगा और अप्रयोजन बुद्ध बात भी आएगी उसमें भी समय चाल गवाएगा और पता ही नहीं रहेगा कि मेरे काम की बात कौन सी है। बात तो दोनों आएगी लेकिन उसको नहीं पता चलेगा। इससे अलावा और भी एक बात बनने की संभावना है कि अप्रयोजन बुद्ध बात पर उसको कभी रस आ गया, इसमें वो खिंचान उसको हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा और प्रयोजन बुद्ध आएगी तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे प्रयोजन की बात आएगी। ये बात उल्टी हो गई, शास्त्राभ्यास करते करते ऐसी उल्टी बात होती है क्या? कि हाँ होती है। ऐसी परिस्थिति में ये ज्ञानियों का जो मार्गदर्शन है बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि मुमुक्षु जीव शास्त्र का अभ्यास करता है तो उसको भीतर में व्यक्तिगत रूप से कैसे करना चाहिए। बहुत सी बातें खुली इस ग्रंथ में, मार्गदर्शन के बहुत गुण हैं और भिन्न भिन्न स्तर के मुमुक्षु हैं इनको काम में आ जाए ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो यहां शास्त्राभ्यास के विषय में मार्गदर्शन दे रहे हैं कि अपने को निर्णय की दिशा में अगर शास्त्र का अभ्यास ज्यादा अनुकूल रहता है चिंतन की बराबरी में तो शास्त्राभ्यास विशेष कर लेना, वहां रस भी आना आता होगा ये बात समझ में आने और लाभ होता है कि नहीं निर्णय की दिशा में ये भी बात देख लेना और अपने को निर्मलता होती है कि नहीं होती है, पूर्व के जो विपरीत संस्कार हैं ये हटते हैं कि नहीं हटते हैं, बहुत से पहलू है इसको। जिसको स्वलक्षी शास्त्र अभ्यास है उसको बहुत सी बातें अपने प्रयोजन की समझने में मिलेगी। अगर प्रयोजन का लक्ष्य रहा तो मेरा कहां कितना प्रयोजन है ये लक्ष्य ही नहीं हो तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते नुकसान होने की भी संभावना है। जो साधन परिभ्रमण की निवृत्ति का हेतु है अगर यथार्थ रूप से उसको अंगीकार नहीं किया जाए तो ये परिभ्रमण वृत्ति का हेतु बन सकता है, बहुत जिम्मेवारी का काम है। ये हीरों से भी अधिक मूल्यवान चीज का व्यापार है, सब्जी तरकारी का नहीं कि तराजू इतना भी ज्यादा 150 ग्राम ज्यादा चले जाए तो चल सकता है, ये मूली पत्ते का व्यापार नहीं है। इसका तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आता है, हीरे को देखने का, ये नहीं चलता है। ये जौहर की दुकान में होता है ना, एक सेंट भी आगे पीछे नहीं हो गए, एक ग्राम एक कैरेट का सवाल नहीं है, एक सेंट भी आगे पीछे हीरे के व्यापार में नहीं चले। इससे भी ज्यादा मूल्यवान है ये, तो मूल्यवान है इसलिए ऐसे तराजू मां चलते हैं। क्यों ऐसे ऐसे तराजू, एक एक तराजू की हजारों में कीमत होती है, 25,000-50,000 के तराजू होते हैं, 200-500 हजार वाले नहीं है। तो इनकी जोड़े की दुकान में इसको तराजू तोल करने के लिए 25-50 हजार का तो वहां इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि इसका मूल्यवान ये चीज है, इससे भी ज्यादा मूल्यवान चीज है जो अपना परिभ्रमण का कारण और परिभ्रमण निवृत्ति का कारण, मामूली चीज नहीं है। इसलिए इसका इसका जो मार्गदर्शन मिलता है और जिस अनुभव से मिलता है ऐसे ज्ञानियों के प्रति कितना बहुमान आवे। क्योंकि हीरो सब भी मूल्यवान है, बचा लेता है परिभ्रमण से, इसका मार्गदर्शन मिल जाता है तो जीव बच जाता है परिभ्रमण से, वरना धोखे में रह जा करके इसी साधन से परिभ्रमण को वृद्धि कर लेता है। इसलिए इसके प्रति जो बहुमान और भक्ति के जो परिणाम है इसका यही कारण रहा। और नेचुरल रूप से जिसको लाभ होगा इनके मार्गदर्शन से, ये चीज आए बिना रहेगी नहीं। इसलिए यदि शास्त्राभ्यास में रस हो तो प्रयोजनभूत शास्त्र का अभ्यास विशेष करना चाहिए कि जैसे शास्त्रों में से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो। और यदि चिंतन से निर्णय में दृढ़ता होती हो, आत्मचिंतन स्वरूप चिंतन तत्व चिंतन तत्व का विचार इससे दृढ़ होती हो, विशेष लाभ होता हो, ये भी कब पता चलेगा कि स्वलक्षी परिणाम होगा आत्मलक्षी परिणाम होगा तब पता चलेगा, इसके पहले पता चलेगा नहीं। विशेष लाभ होता हो तो ऐसा प्रयोजनभूत चिंतन विशेष करना चाहिए, बिना प्रयोजन वाले तर्क वितर्क उठाने से ये मानसिक भूमिका जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मति अव्यवस्थित हो जाती है। और जगह इस ग्रंथ में ही कहा है विजयवंशी ने कि अपनी व्यवस्थित मति को व्यवस्थित करके सबसे पहले तू तेरा असली मूल आत्मस्वरूप का निर्णय करने की दिशा में ही प्रयास कर, इधर उधर के फालतू तर्क उठा करके मति को अव्यवस्थित मत कर देना। तेरी बुद्धि है वो गूंजवण में पड़ जाएगी, उलझन में पड़ जाएगी, ये तो कभी ऐसी बात आती है कभी ऐसी बात आती है कभी वैसी बात आती है, करें क्या हम। शास्त्र में तो बहुत कथन आते हैं, बहुत से प्रकार के आते हैं, इतने इतने प्रकार हैं कथन के और इतनी शैलियां हैं जीववाणी में कि अगर प्रयोजन भूत विषय पर मुमुक्षु जीव का लक्ष्य नहीं रहा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, लाभ होने की जगह पर नुकसान हो जाएगा। इसलिए बहुत गंभीर विषय है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कहते हैं कि चिंतन से यदि चिंतन से निर्णय में दृढ़ता होती हो, या भी दोनों जगह अपना निर्णय की बात नहीं है, पहले निर्णय करो, निर्णय बिना कोई बात आगे बढ़ने वाली चलने वाली है ही नहीं। चिंतन में निर्णय से दृढ़ता होती हो, विशेष लाभ होता हो, तो ऐसा प्रयोजनभूत चिंतन विशेष करना चाहिए बजाय शास्त्र अभ्यास। चिंतन विशेष क्या, कोई पाबंदी नहीं है कि तुमको शास्त्र अभ्यास ही करना, चिंतन नहीं करना, या चिंतन ही करना शास्त्र अभ्यास नहीं करना, ऐसी बात नहीं है। हालांकि दोनों बात कुछ पैमाने में तो साथ ही साथ रहती ही है, अकेला शास्त्राभ्यास हो और चिंतन करे ही नहीं, ऐसी तो बात ही कहने के लिए है। पर अकेला चिंतन नहीं करे, शास्त्र को छुए ही नहीं, तो ये भी बात ठीक नहीं है, ऐसा मुमुक्षु की भूमिका में हो ही नहीं सकता, ये उचित नहीं है। लेकिन कौन सा साधन अधिक तौर से करना, अधिक प्रमाण में करना, इसका प्रत्युत्तर चलता है कि जहां अपने परिणाम में रस आवे, लाभ होवे, निर्णय की दिशा में आगे बढ़ सके, जहां ऐसा हो सके, वो अपने अपने को अपना प्रयोजन की दृष्टि से इस बात को अंगीकार करना है कि मुझे क्या करना है। आखिर में अपनी परिणति को लाभ हो वह करना चाहिए, अपनी चैतन्य परिणति आत्मा को पहचाने। देखिए क्या कहते हैं, अपनी चैतन्य परिणति आत्मा को पहचाने, यही ध्येय होना चाहिए दोनों बातों में। तत्व का चिंतन हो, अनेक प्रकार के विचार चलेंगे, या शास्त्र का अभ्यास हो, अनेक शास्त्र का अभ्यास हो सकता है, लेकिन सभी में सामान्य बात, कॉमन फैक्टर जिसको बोलता है, यही होनी चाहिए कि जिससे अपनी चैतन्य परिणति अपने आत्मस्वरूप का पहचान करे। सबसे पहले ये बात है, अपने स्वरूप की पहचान बिना अपने हित की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, एक कदम भी नहीं बढ़ सकते, ये बात सबसे पहले है। चैतन्य प्रणति आत्मा को पहचाने, यही ध्येय होना चाहिए, ध्येय में यही लक्ष्य होना चाहिए, और इसी अभिप्राय से ही ये प्रवृत्ति चलनी चाहिए। उस ध्येय की सिद्धि के हेतु प्रत्येक मुमुक्षु को, सभों को, मैंने सभों को ऐसा ही करना, शास्त्र ही पढ़ना, चिंतन किसी को ज्यादा नहीं करना, शास्त्र ही ज्यादा पढ़ना, या चिंतन ज्यादा करना, शास्त्र ज्यादा नहीं पढ़ना, ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता, ऐसी पाबंदी नहीं कर सकते, क्योंकि योग्यता अलग अलग प्रकार की होती है। अपनी योग्यता को ध्यान में लेकर के, समझ करके, जो भी विशेष लाभ का कारण हो, प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए अपने जो कौन सी प्रवृत्ति करनी हितावह है, वो बात समझ करके उस प्रवृत्ति में जाना चाहिए। ऐसे मुमुक्षुओं को तत्वज्ञान के विषय में, प्रयोजनभूत विषय पर ध्यान दिलाने की यहाँ कोशिश की है कि प्रयोजन की जो दृष्टि है वो बहुत तीक्ष्ण होनी चाहिए। मैंने बिना प्रयोजन के विषय में उलझते रहेंगे तो प्रयोजन वाला विषय छूट जाएगा। ये विषय मुमुक्षु की यथार्थ भूमिका में इसलिए सुसंगत है कि मुमुक्षु आगे बढ़कर के तो सम्यक दृष्टि होने वाला है, तो सम्यक दृष्टि का एक लक्षण है कि सम्यक दृष्टि के सूक्ष्म ज्ञान में प्रयोजन भूत विषय और अप्रयोजन भूत विषय दोनों समझने की सामर्थ्य है, ताकत है, फिर भी वो तो प्रयोजन भूत विषय को ही मुख्य तौर से अंगीकार करता है, उसमें ही ताकत लगाता है, अप्रयोजन विषय को छोड़ देता है। वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को प्रयोजन भूत विषय और अप्रयोजन भूत विषय दोनों सामने आता है, बुद्धि भी वो उसमें लगा सकता है, लेकिन अप्रयोजन भूत विषय मुख्य हो जाता है, प्रयोजन भूत विषय उसको गौरव हो जाता है। यही कारण से इस विषय में आगे जाकर के जो सम्यक दर्शन में होने वाली परिस्थिति है, इसी का पूर्व भूमिका में इस प्रकार की सुसंगत अवस्था होनी जरूरी है कि जिससे विपर्यास में नहीं आ जाना है, और आगे वाली जो सही स्थिति है उसको प्राप्त करें। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचन करते हुए श्री गुरुदेव ने इस विषय में कुछ बातें की हैं। गुरुदेव के प्रवचन में से ये विषय थोड़ा ले ले। सिद्ध समान अपने आत्मस्वरूप का आंशिक अनुभव होना, इसी को धर्म कहते हैं। ये धर्म की परिभाषा है गुरुदेव के शब्द में। ये प्रवचन जो चल रहा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे अधिकार का ये प्रवचन चल रहा है, इसमें से ये बात चुनी हुई है। सिद्ध समान अपने आत्मस्वरूप का अनुभव होना, यही धर्म है। आनंद कंद प्रभु, आनंद कंद प्रभु, उसकी निर्विकारी शांति, उसी को धर्म कहते हैं। ये धर्म की दूसरी परिभाषा है। ठीक है, ये तो गुरुदेव की वाणी है। तोप का गोला समझो, मिथ्यात्व को चूर चूर करके खत्म करने वाली चीज है। धर्म की दो परिभाषा के है नहीं, कोई अनूठी बात है कि नहीं, लगती है कि नहीं लगती है, और जगह मिलना मुश्किल है ये चीज। सिद्ध समान अपने आत्मा का आंशिक अनुभव होना यह धर्म है, पर आनंद कंद निज प्रभु की निर्विकारी शांति, उसी को धर्म कहते हैं। यह जीव अपना जीव द्रविलिंगी साधु भाव भूतकाल में अनंत वेद, अनंत वेद ग्रह को बजायो, फिर भी उसको धर्म प्रकट नहीं हुआ। क्यों? रसिया ये मुद्दा निकाला है गुरुदेव ने कि धर्म प्रकट नहीं हुआ क्योंकि इसका लक्ष्य अप्रयोजन भूत पर चला जाता है। क्या होता है ये जो बात 421 नंबर के बोल में जो चली है, ये बात यहां ली कि इतना करने के बावजूद भी धर्म क्यों नहीं प्रकट हुआ? शास्त्रावास किया, पर व्रतादि के पालन किए, फिर भी लक्ष्य अप्रयोजन भूत पर चला गया है।
प्रयोजन की तो बात पर लक्ष्य ध्यान नहीं दिया। इसी कारण से ये मिथ्या सिद्धांत के जोर से, दर्शन मोह के जोर से ऐसा होता है। देखिए यहाँ भी गुरुदेव ने इस विषय पर ध्यान दिलवाया है कि ऐसा क्यों होता है। जीव शास्त्र तो पढ़ता है और क्रिया भी करता है, फिर भी उसको धर्म की प्राप्ति नहीं होती, इसका कारण क्या है? कि दर्शन मोह तीव्र होने से इसका ध्यान प्रयोजन भूत विषय पर नहीं जाता है। प्रयोजन सिद्धि में ये विषय लिया है और दर्शन मोह अगर मंद हुआ मुमुक्षु की भूमिका में तो अपना प्रयोजन को पहले देखेगा, इसके बाद स्वलक्षी परिणाम रहेगा, आत्मलक्षी परिणाम रहेगा और उसको पहले देखेगा कि मेरा प्रयोजन कहाँ है। ये प्रयोजन देखने का सीधा संबंध दर्शन मोह के साथ होता है। ज्ञान और श्रद्धा परिस्थिति आपस में कैसी है ये इस परिस्थिति को स्पष्ट सूचित करती है। प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत विषय ज्ञान का है न कि श्रद्धा का, लेकिन श्रद्धा के साथ इसका सीधा संबंध है कि अगर जीव का लक्ष्य अप्रयोजन भूत पर विषय पर ज्यादा रहता है तो उसको दर्शन मोह भी मंद नहीं हुआ है, मुमुक्षु की भूमिका तीव्र दर्शन मोह से ऐसी विपरीत प्रवृत्ति चल रही है और ये विपर्यास में आगे बढ़ रहा है, मिथ्या दृढ़ हो जाएगा। आगे जाके एक ग्रहित मिथ्या साधक और ग्रहित मिथ्या साध्य हो जाएगा, ये बोल लिया है दीपचंद जी ने अनुभव प्रकाश में। साधु साधक के बहुत से बोल लिए हैं, इसमें एक ऐसा भंग लिया है, साधु साधक के बहुत से भंग बताए उन्होंने, इसमें एक ऐसा भंग बताया कि एक ग्रहित मिथ्यात्व तो साधक है और ग्रहित मिथ्यात्व तो साध्य, ये कैसे बन सकता है? एक ग्रहित मिथ्यात्व तो साधक पर इसे ग्रहित मिथ्यात्व कैसे साधा जाता है कि ये दृढ़ होते 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 इतना तीव्र हो जाएगा कि ग्रहित मिथ्यात्व यही परिस्थिति है कि जो मिथ्यात्व की बिल्कुल विपरीतता बहुत बढ़ जाती है तो इसमें से जीव ये ग्रहित मिथ्यात्व में चला जाता है। जैसे कुदिवादि का स्थापन होता है, इसमें क्या है? ग्रहित मिथ्यात्व, तो देव नहीं उसको देव मानते, गुरु नहीं उसको गुरु मानते, शास्त्र नहीं उसको शास्त्र मानते, सत्पुरुष ने उसको सत्पुरुष मानते, ग्रहित मिथ्यात्व होता है। इसमें कहाँ से हुआ? आए तो जैन कुल में, लेकिन ये गड़बड़ी कहाँ से हुई कि मिथ्यात्व तीव्र हो जाने से एक ग्रहित में से ग्रहित में चला जाता है। क्योंकि बुद्धि तो पड़ी है उद्गल में से सुख लेने की और ये वितराग देव तो कुछ देता नहीं और ये तो अपने सुख को ढूंढता है जी, कहीं और जगह ढूंढने को चला जाएगा, इसमें से ये सुख पैदा हो जाएगा। इसलिए ज्योतिष आदि इसमें नहीं जाना यही कारण है इसका, यही बात है इसका, संतान के को बचाने की बात है, महत्वपूर्ण बात है। नौ सौ चौतीस में कहते हैं, थोड़ा मुमुक्षु के लिए विषय समझने लायक है कि मेरा द्रव्य स्वभाव ज्ञान स्वरूप है, मेरा द्रव्य स्वभाव ज्ञान स्वरूप है, उसका अवलंबन से, द्रव्य का अवलंबन से ही सम्यक पर्याय प्रकट होता है। ऐसी प्रयोजन भूत बात को मिथ्या दृष्टि पकड़ता नहीं। क्या कहते हैं आगे जाकर कि मेरा द्रव्य स्वभाव है ये ज्ञान स्वभावी तत्व है और इसके अवलंबन से ही सम्यक पर्याय प्रकट होने वाली है इसके अलावा सम्यक होने का कोई कारण नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। ऐसी प्रयोजनभूत बात को मिथ्या दृष्टि पकड़ता नहीं, उसको दूसरे दूसरे बात में रसाती है। कभी तो कभी दृष्टांतों में रसाने लगता है, कोई दृष्टांत ऐसा रोचक हो गया तो इसमें रसाने लगता है, उसको बनवाता है। दृष्टांत तो सिद्धांत के एक पहलू को समझाने के लिए होता है, दृष्टांत में एक ही पहलू है सिद्धांत का, पूरा दृष्टांत तो लागू ही नहीं होता। लेकिन रस आ जाता है प्रयोजनभूत विषय में, प्रयोजनभूत विषय छूट जाता है। मिथ्या दृष्टि को प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों को दोनों को जानने का उधार है, सूक्ष्म है, फिर भी प्रयोजनभूत तत्व को जानने में उसका लक्ष्य नहीं जाएगा। मिथ्यात्व के कारण, दर्शन मोह की तीव्रता के कारण प्रयोजनभूत तत्व को जानने में उसका लक्ष्य जाएगा नहीं, ऊपर ऊपर से चला जाएगा। बात इसके प्रयोजन की आएगी, इसका ज्ञान नहीं जाएगा, उसका लक्ष्य नहीं जाएगा, ऊपर से चला जाएगा। यह दर्शन मोह के कारण से ऐसा होता है, कि गुरुदेव के शब्द पड़ा है, यह दर्शन मोह के कारण से है। उघाड़ तो उघाड़ी ही है, क्षोभम तो क्षोभम ही है, बात तो बुद्धिगम में हो सकती है लेकिन वजन नहीं आएगा, प्रयोजन भूत बात पर वजन नहीं जाएगा, लक्ष्य नहीं जाएगा, मुख्यता नहीं होगी। बार में तो जानने में क्या आया कि ये दृढ़ स्वभाव है, दृढ़ स्वभाव में अनंत गुण भरे हैं, लेकिन फिर दूसरी चलती रहेगी, ये बात छूट जाएगी, स्वभाव की बात छूट जाएगी और दूसरी दूसरी बात में उलझ जाएगी, ये बात हो जाएगी। उघाड़ तो उघाड़ है, फिर भी उल्टी श्रद्धा के कारण वशात इसका जो ज्ञान है उसमें ऐसी मिथ्या प्रवृत्ति, विपरीत प्रवृत्ति होती रहती है, यही कारण है। तीसरा बोल देते हैं, ज्ञानी को भी प्रतिपक्ष लेते हैं कि ज्ञानी को भी प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत दोनों तत्व जानने का उधार होता है। जैसे अज्ञानी को बुद्धि है वैसे ज्ञानी को भी बुद्धि तो है, दोनों बात को जानता है। फिर भी मिथ्यात्व के अभाव से, मिथ्यात्व नहीं होने से प्रयोजनभूत को जानने पर इसका लक्ष्य जाता है और वो सुखी होता है। इसका फल भी बता दिया, उधर नहीं बताया लेकिन इसका फल दुखी होना है, परिभ्रमण होना है, और यहाँ इसका फल बता दिया। ज्ञानी के विषय में इतनी बात थोड़ी ज्यादा ले ली, इसका फल क्या आएगा ज्ञानी को, कि ज्ञानी को मिथ्यात्व का अभाव होने से प्रयोजनभूत तत्व को जानने पर इसका लक्ष्य जाता है और इससे उसको सुखमय दशा की प्राप्ति होती है। इस तरह इसके सुसंगत रूप में अगर मुमुक्षु की भूमिका यथार्थ होगी, कोई अपने प्रयोजन के मुद्दे की बात आएगी तो उसका विशेष रूप से ध्यान जाएगा। क्या कहा? विशेष रूप से इसका ध्यान जाएगा कि अरे ये बात भले ही संक्षेप में आई हो कहीं पर, कुदरती इसका विस्तारवाद नहीं हुआ हो, लेकिन एक बात दस में से एक बात प्रयोजन बुद्ध जो आएगी अपने प्रयोजन की, उसको चौंक मारे भीतर में, एक पात्रता का लक्षण है, यथार्थ भूमिका का एक लक्षण है। और ये सुखी होगा। अज्ञानी कदाचित व्यवहार धारणा करें, शास्त्र पढ़ते पढ़ते उसको याददाश्त हो जाए, पढ़ाई हो जाए, धारणा कर लेगा, फिर भी वो अंतर्मुख दृष्टि करता नहीं, और अंतर्मुख दृष्टि करने का उसको प्रयास भी करने का होता नहीं, नहीं करेगा। यहां तो ये बात है साफ साफ कि जब ऐसी अलौकिक तत्व की बात तेरे सामने आई तो प्रयास क्यों नहीं करता है। श्री गुरु जवाब मांगते हैं हमसे हमारे हित के लिए कि जब ऐसी बहुमूल्य बात तेरे को सुनाई, तेरे सामने आई, कोई भाग्यवशात कि बहुत पुण्य का उदय होता है तो ऐसा होता है। लोकोत्तर पुण्य का ये विषय है, पुण्यानुमंडी पुण्य का ये विषय है, पापानुमंडी नहीं। फिर प्रयास क्यों नहीं, ये सवाल है। प्रयास होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ये बात मस्तिष्क में बिल्कुल घुस जानी चाहिए, हटनी नहीं चाहिए। बलवान धारणा अज्ञानी करता है, फिर भी अंतर्मुख दृष्टि नहीं करता। अतः प्रयोजनभूत हो उसी को ही वो जानता है, प्रयोजनभूत विषय को वो जानता ही नहीं है। वो तो अप्रयोजनभूत को ही जानता है, जो भी जानता है इसके लिए तो अप्रयोजनभूत ही है। ये हालत हो जाती है, इसलिए ये एक महत्व का मुद्दा रहा कि जिसमें कोई भी बात हमारे सामने आ जाए, तत्वज्ञान के सैकड़ों हजारों पहलू हैं, सैकड़ों हजारों बात है, कोई भी बात हमारे सामने आए, पहले ये बात उसके ध्यान में आनी चाहिए कि हमारे प्रयोजन की है या हमारे बिना प्रयोजन की है। इसी का नाम मोक्ष है। अगर ये ऐसी छटनी नहीं करता, ऐसी खतावनी नहीं करता, बहुत बड़ी गड़बड़ होने की संभावना है आगे जाकर। अभी बड़ी मत नहीं दिखे वो गड़बड़, लेकिन आगे जाकर जाएगी। इसलिए कोई भी बात आवे सामने, सभी बात को देखने का दृष्टिकोण ही यही हो जाना चाहिए मोक्ष को, कि प्रयोजन बुद्ध की है या अप्रयोजन बुद्ध की, चाहे अध्यात्म की कोई भी बात हो। हमारे यहां बहुत से मनुष्यों की चर्चा होने का प्रकाश बनता है। तो एक दफे सोनगढ़ में कुछ गुरुदेव का नियम सार की 15 गाथा का प्रवचन चल रहा था, जिसे शास्त्र पढ़ा हो उसको पता होगा कि गाथा का विषय कौन है। गाथा का विषय है कारण शुद्ध पर्याय का। कौन सा विषय है? कारण शुद्ध पर्याय। संप्रदाय में तो ये चीज का नाम का ही पता नहीं है किसी को, कि हमारे जो दादा के दादा थे, पूर्वज थे ना, ये तो है, ये पूर्वाचार्य हमारे तो दादा के दादा है। जिसके कुल में आए तो दादा के दादा हो सकते हैं। चौपड़े में क्या लिख के गए है, पिता के तो वही खाता दिखता है, किसके किसके पास उगाई रखी है, कहां से लेने को जाना, क्या जाने का है, है? इसको नहीं देखता है। बहुत सूक्ष्म विषय है ये, तो गुरुदेव की ताकत है कि ऐसे विषय को खोल करके प्रवचन कर सके। और मुमुक्षों में बहुत कम मुमुक्षों की ये शक्ति है कि ऐसे विषय को प्रवचन में फिर भी पकड़ सके, समझ सके। ऐसा बहुत सूक्ष्म विषय चला है, कारण शुद्ध पर आएगा। तो हमारे मुमुक्षों में चर्चा बहुत सूक्ष्म है, बारीक है, सैद्धांतिक है, और पर्याय के शुद्ध होने का कारण जिसको बताया, कारण शुद्ध पर्याय, पर्याय के शुद्ध होने का कारण, ऐसी बात क्या प्रयोजन होते हैं प्रयोजन होते, कुछ चर्चा ऐसी चली थी हमारे इन भाइयों के साथ में कि प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत के विषय में, तो बहुत सालों के पहले की बात है, 20-25 साल पहले की बात है। तो प्रयोजन भूत है कि अप्रयोजन भूत है, बताइए, ये प्रश्न हमारे सामने है। इतनी बात सूक्ष्म है, परमानंद ने आई है, गुरुदेव ने भी बहुत गंभीरता से उसको खोली बताई, फिर भी कईयों को पकड़ने में नहीं आई। प्रयोजन भूत होगी या अप्रयोजन भूत होगी, ये प्रश्न चला। हमने कहा कि प्रयोजन भूत तो नहीं, अरे ऐसी महत्वपूर्ण बात प्रयोजन भूत नहीं है क्या? समझने वाले को तो पहले ये थोड़ा ये लग गया, ये बात कैसे कह सकते हो कि प्रयोजन कैसे कहते हो? दूसरा प्रश्न करने वाले को तो कोई पाबंदी थोड़ी है कि ये प्रश्न नहीं करना, ऐसे थोड़ी बात है। क्या 3 इंच सम्यक दृष्टि होता है, उसको कारण शुद्ध पर्याय का जो भेद है, प्रभेद है, वो तो समझ में आता है क्या? नहीं आता है। अगर प्रयोजन भूत होती तो वो आना ही बनता है, इसके पहले सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। मैंने अध्यात्म के विषय में भी बहुत सी बात, प्रयोजन भूत है या प्रयोजन भूत नहीं है, इस दृष्टिकोण से सोचे तब तो पता चले ना कि ये भी एक दृष्टिकोण है और महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है कि जहां से इसकी खतावनी करनी है। अगर ये बात इस दृष्टि से नहीं दिखता है, गड़बड़ वाली बात है, गड़बड़ हो ही जाएगी। एक प्रयोजन भूत विषय पर समय निकल जाएगा, जीवन निकल जाएगा, प्रयोजन भूत विषय छूट जाएगा। प्रयोजन भूत विषय कितना है, कहाँ है, कैसे है, ये निर्णय करना एक तब ही होता है। फिर बोले ये कैसे हो गए, कोई ये तर्क कर सकता है यहाँ पर कि एक तो मुमुक्षु जीव है, ज्यादा तो समझता नहीं है, जितना ज्ञानी समझता है उतना तो नहीं वो समझता है, और ऐसी बातों में कहां चुप रह जाए, कहां चुप नहीं रहे, क्या पता चले, हजारे बात आती है सामने। इतने इतने शास्त्र पढ़े हैं, हजारों बात है उसमें, कैसे निर्णय करे और चुप हो ही जाए, नहीं हो जाए, क्या पता चले। इसके लिए दो साधन है, एक तो अंतरंग साधन है, एक बहिरंग साधन है। अंतरंग साधन तो होना ही बनता है, बाह्य साधन तो पुण्य योग से होता है। बाह्य साधन है सत्पुरुष का समागम, इसको अच्छी तरह जानने वाला और अच्छी तरह मार्गदर्शन देने वाला तो सत्पुरुष है। इस बात में अगर इसके चरण में रह जाए, इसके समागम में आ जाए, तो कहीं भी चुप हो जाए, निकलने का आसान हो जाएगा। खुद को पता नहीं होगा, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं वो जानते हैं कि यहां भूलता है, कृपा करके बता देगा, कृपा इसकी हो जाएगी तो बता देगा कि भैया ये तेरे प्रयोजन का विषय है। लेकिन पुण्य हुए, लोकोत्तर पुण्य हुए तो यही समागम बैठता है, वरना नहीं मिलता है, पैसों से नहीं मिलता है, और सब पैसे नहीं मिले, सब पैसे वाले नहीं है, है क्या? अरे कितने तो ऐसे लोग हैं कि जो बहुत मुश्किल से आजीविका को निभाता होगा, ऐसे भी लोग जो सालों से मार रहते हैं, एक ही निर्णय के हमें समागम चाहिए, दुनिया की संपत्ति लेने के लिए हमको आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसे भी लोग बहुत से हैं। और दूसरा जो अंतर साधन है, ये तो होना ही मांगता है, चाहे सत्पुरुष का समागम मिले या नहीं मिले, और ये है कि मुझे
मेरा आत्महित ही करना है, दूसरा इस जीवन में कुछ नहीं करना किसी भी कीमत पर, मुझे मेरा आत्महित ही करना है, मेरा आत्महित के अलावा मुझे इस जीवन में मेरा कोई ध्येय नहीं है। अनंत काल से मैं परिभ्रमण कर रहा हूं, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ भोगा, बहुत कुछ दुखी हुआ, और मेरे छुटने की बात है, ये छुटने की बात सामने आई है, मुझे कुछ जागृति भी आई है कि बात तो वाकई ही छुटने की है, कोई धोखा है ही नहीं इसमें, तो इस मौके का मैं लाभ लेने वाला हूं, अब इसको छोड़ूंगा नहीं, मुझे मेरा हित कर ही लेने का है। जब ये परिस्थिति भीतर में पैदा हुई, ये वर्तमान काल है, ये प्रश्न खुद बात इसकी नजर के बाहर नहीं जा सकते, इसकी नजर से कोई भी इसके आत्महित की प्रेरण की बात होगी छुप नहीं सकते। मनुष्य की भूमिका में, इस योग्यता में, इस क्षमता में इस जीव आ जाता है, ये बहुत कुदरती चीज है। हरेक को जगत के व्यवहार में भी अपने प्रेरण के विषय में दृष्टि कितनी सूक्ष्म हो जाती है। बनिए लोग तो ये कहते हैं कि उसमें एक पैसा का नुकसान नहीं है, तो लाखों की पान है, जहां से हमारे गुजराती में लाख की पान कहने वाले पान, मैंने पहले से वो पान से लिखते थे ना ऐसे, एक आने का आधे पान पैसे के ऊपर, ऐसे चार लाख आने का वह पान है, पान मैंने ली थी, लकी से आधा पैसा चाराना अठाना ऐसा लकी से दिखाया जाता था रकम के बाद, ये तो है जो पुराने लिखे हैं उसको तो पता होगा, अब नए पैसे आ गए। हाँ, ये लोग क्या कहते हैं, एक पैसे का नुकसान नहीं है तो लाख की पान है, थोड़ी सीधा नुकसान नहीं है तो ये बागाने में पानसेरी रखी हुई है, बागाना ही मारता है पानसेरी को मारता है, क्या कहते हैं, इतना दावत निकाली है लोगों ने कि हमको कोई सीधा नहीं इनडायरेक्टली नुकसान करने वाला हो तो भी हमको पता चल जाता है, सीधा नुकसान करने वाले को तो समझे ही समझे, क्यों तुम्हारा उसका प्रयोजन रहा है। अगर जीव को वाकई ही जीव निज हित का प्रयोजन होए, वास्तविक रूप से अंदर में से अंतर में से एक भी प्रयोजन खुद बात नहीं छूट सकते, और एक प्रयोजन विषय के लिए वो अपना समय गवाने वाला नहीं है, अपने बात करना है सुनी चाहिए, छोड़ देगा, कौन कर देगा, जाने को इस बात को इसमें कुछ कम नहीं है, हमको तो पानी रुकना है, हम तो हमारे प्रयोजन ले जाएंगे, ऐसा बनता है तो उसको कोई प्रतिबंध नहीं, कोई रुकावट नहीं, वो आगे बढ़ करके अपनी आत्मा को प्राप्त करके अपना शाश्वत कर लेगा। ये बातें गुरुदेव ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक के चौथे अधिकार पर प्रवचन करते हुए प्रवचनों में की है, अच्छा।